बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 8 जुलाई 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं उन 4 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मुकेश नायक, उज्जैन मध्य प्रदेश से, अजित कुमार, आपका गांव है रूपिन, जिला गया बिहार से, अंकित शर्मा, आपका गांव है कोठारी काला पीपल, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से, और प्रदीप कुमार उरांव, आपका गांव है कपूरिया, जिला धनबाद झारखंड से। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत आइए हम लोग बजट 2019-20 पर बात करते हैं और अपनी बात को इसी विषय तक ही सीमित रखते हैं क्योंकि न्यूज आपने सुनी होगी। न्यूज में ऐसी कोई खास बात मुझे दिखी नहीं जिसको लेकर के चर्चा की जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट की कीमत पर उन पर चर्चा की जाए। तो आइए आज की अपनी बात को हम लोग बजट 2019-20 तक ही केंद्रित करते हैं। पहली बात दोस्तों, ये जो बजट होता है, जिस तरह से कि आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके नॉलेज का जो पीरियड है यानी यूटिलिटी का जो पीरियड है वो काफी छोटा होता है। किस तरीके से देखिए, अभी 2019-20 का बजट आया, चलिए अंतरिम बजट पहले आ गया था तो इस बार थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि चुनाव थे, जुलाई में आया है, अदरवाइज फरवरी में बजट आ जाता है। सामान्यतया बजट अगर फरवरी में आता है तो सीधी सी बात है कि उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्री में बन जाती है क्योंकि प्री एग्जाम आपके मई लास्ट में होते हैं या जून की बिल्कुल शुरुआत में होते हैं, तो प्री में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसके बाद जब मेंस एग्जाम सितंबर में होते हैं तो बट नेचुरल है कि सितंबर में बजट पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना रहती है। उदाहरण के तौर पर आइए हम एक नमूना देखते हैं कि बजट पर किस तरह के प्रश्न मेंस में पूछे जा सकते हैं और उसके लिए हमारे पास 2017 का पेपर अवेलेबल है। देखिए, 2017 के पेपर में थर्ड जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्य, भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। इंग्लिश में है, वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-18 इज टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। एनालाइज द मेजर्स प्रपोज्ड इन द बजट 2017-18 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये प्रश्न पूछा गया। इसके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेंस में जो बजट पर प्रश्न आ सकते हैं वो बजट के कंप्लीट करेक्टर को लेकर के आ सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसके मूल थीम को, कि उस साल के बजट में किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम 2019-20 के बजट को इस आधार पर जानने की कोशिश करें तो आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन फिर भी आप एक थीम चुन सकते हैं और वो थीम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हम बहुत जल्दी भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 5000 डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं तो आप देख चुके हैं कि 8% की आपको जीडीपी की दर हासिल करनी होगी और इसको करने के लिए 2025 अब ज्यादा समय नहीं है, 19-20 का बजट तो आ गया है, 5 साल में आप बनाना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको बजट में उस तरह के प्रोविजंस करने पड़ेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी हो जाए। देखिए, अगर हम अभी की अर्थव्यवस्था को लें तो हमारी केवल 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, 2.9, चलिए हम इसे पूरी तरह से 3 मान लेते हैं, 5 साल में 3 को 5 तक पहुंचाना, 5 ट्रिलियन, ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, उसके लिए एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बार के बजट में हमें यह ढूंढना चाहिए, मेंस में अगर आप बैठ रहे हैं तो, कि उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, राइट। ये मेंस का हो गया। अब आप देखिए कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष इसका यह है कि बजट के दो भाग होते हैं। पहला तो यह कि आपको बजट की जो शब्दावली है, जो शब्दावलियां हैं, बजट किस तरीके से तैयार किया जाता है, संसद में किस तरीके से पारित किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये जो नॉलेज होगी आपकी एक तरह से स्थायी नॉलेज होगी जो कभी बदलेगी नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। इन सब के बारे में आपकी जानकारी होनी ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो ये बजट की मूलभूत जानकारियां हो गई, क्योंकि इन शब्दों का अगर आपको ज्ञान नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है तो फिर बजट के बारे में आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो हिस्सा है, चूंकि अभी बजट आया है और बजट को पढ़ने के बाद उसमें जो जो शब्द आपको ऐसे लगते हैं कि नहीं इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, उन पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए। और अभी बहुत अच्छा अवसर है जब आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रैक्टिकल मॉडल है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे शब्द हों जिनका इस्तेमाल बिल्कुल पहली बार किया गया हो, या यूं कह लीजिए पहली बार नहीं भी किया गया हो तो बहुत ज्यादा बार नहीं किया जा रहा हो। अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिलता है तो मान करके चलिए कि वो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए इस बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शून्य बजट कृषि, जीरो बजट फार्मिंग। ये शून्य बजट कृषि क्या है ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। इस बार के अखबारों में आया शून्य बजट कृषि। वैसे जब आप एग्रीकल्चर के टॉपिक को पढ़ेंगे किताबों में तो मुझे नहीं लगता है कि यह शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हो सकता है कि प्री में पूछ लिया जाए कि यह शून्य बजट कृषि क्या होता है, क्योंकि देखिए जो पेपर सेटर होते हैं वो चीजों को हवा से नहीं पैदा करते। जिनको यह जिम्मेदारी दी जाती है वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का आभास होता है और बकायदे वो न्यूज से जुड़े रहते हैं। जो बेसिक पत्रिकाएं हैं, जो बहुत ही अच्छी पत्रिकाएं हैं, योजना कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं, वो उनसे जुड़े रहते हैं, अखबारों से जुड़े रहते हैं और देखते हैं कि उन सब में क्या आ रहा है और उसी को आधार बनाकर के ही वो अपने क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, चाहे प्री के हो, मेन्स को हो, यहां तक इंटरव्यू के ही क्यों ना हो। तो यदि आपकी सतर्कता बिल्कुल फोकस्ड तरीके से है, सही तरीके से है, तो फिर वे आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट सच पूछे तो वो यही तो चेक करना चाहते हैं कि आप भ्रमित होते हैं या नहीं होते हैं, या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या बहुत ही फोकस्ड तरीके से तैयारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मेंस में अपीयर नहीं होंगे। अब दूसरा सवाल उठता है कि जो अपीयर होंगे वो क्या करें, जो मेंस में अपीयर होने की संभावना देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जो बजट है वो आंकड़ों का संजाल है, ढेर है आंकड़ों का। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कौन कौन से आंकड़े आप चुनेंगे। आंकड़ों को चुनने का जो सबसे अच्छा आधार है फ्रेंड्स, वो है आपका सिलेबस। और जब मैं सिलेबस की बात कह रहा हूं तो उस सिलेबस की बात नहीं कह रहा हूं जो यूपीएससी ने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बल्कि उस सिलेबस की बात कर रहा हूं जहां उन्होंने जो प्रोवाइड किया है यूपीएससी ने, उसके भी तार निकलते चले जाते हैं, उसके सब पॉइंट्स बनते चले जाते हैं। और इस तरीके से यूपीएससी के द्वारा प्रस्क्राइब्ड सिलेबस का मैं समझता हूं कि शायद 4-5 गुना सिलेबस बड़ा हो जाता है। तो जब आप देखते हैं कि आपके सिलेबस में ये हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने सिलेबस के आधार पर ही बजट में से चीजें चुननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जेंडर बजट, ये आपके सिलेबस में है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखें, प्रीवियस पेपर इसमें आपकी मदद करते हैं आपके सिलेबस को समझाने में। जेंडर बजट प्री में क्वेश्चन आया है 2 साल पहले। आपको मालूम होना चाहिए जेंडर बजट क्या है। जेंडर बजट का मतलब है कि एक ऐसा बजट जहां जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन किए जाते हैं, और जो भी बजट दिया जाता है उसका 100% महिलाओं पर ही खर्च किया जाता है। अब यह उनके लिए अलग से हो गया है। तो जेंडर बजट के बारे में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा कि पिछले साल के बजट में 1.22 लाख करोड़ रखे गए थे, जिसे बढ़ा करके इस बजट में 1.37 लाख करोड़ कर दिया गया। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि जेंडर बजट आपके टॉपिक में है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एजुकेशन के बारे में इस बजट में 2-3 प्रोविजन है, जैसे भारत में पढ़ो अभियान शुरू किया जाएगा, भारत में पढ़ो, इसके लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दूसरा फैक्ट यह कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, की जाएगी। तो ये 2 फैक्ट आपको एजुकेशन के लिए मिल गए। इसके बाद फिर आप एग्रीकल्चर और अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो आप देखिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया एग्रीकल्चर में, किया जाएगा स्फूर्ति, इसमें 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसमें 50,000 जिससे दस्तकार जुड़ेंगे। इन क्लस्टर में बांस, शहद एवं खादी इनको रखा जाएगा। ये आपके एग्रीकल्चर से भी संबंधित है, ये आपके ग्रामीण विकास से भी संबंधित है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जब आप उद्योग जगत में आते हैं तो आपको मालूम है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, ऐसे इंटरप्राइजेज जो GST में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए सरकार ने प्रोविजन किया है कि ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। और आपको ध्यान होगा आर्थिक समीक्षा के तहत मैंने ये कहा था कि उसमें कहा गया है कि ये जो हमारे लघु उद्योग स्मॉल उद्योग हैं इन्हें बढ़ाने की बहुत जरूरत है और इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो धन की समस्या है, तो उनको 2% की छूट दे दी गई। कृषि क्षेत्र में जब हम आते हैं तो बकायदे सरकार ने कहा है कि वो 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाएगी, 10,000, और अभी हमारे पास सिर्फ 4,000 हैं, तो कृषि उत्पादक संगठन बनाने से उनका क्षेत्र बढ़ जाएगा, खेती की पैदावार में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। और सरकार ने एक बहुत बड़ी बात की है, देखिए जिसका संबंध सीधे सीधे $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था से, कि 5 साल के अंदर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, 100,00,000 करोड़ रुपए। और याद रखिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक तेजी आ जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, लोहा भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जान आ जाती है। और अगर आप 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे तो हो सकता है कि हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। हालांकि अगर आप अमेरिका वगैरह से तुलना कीजिएगा तो हम अभी बहुत पीछे हैं, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो $21 ट्रिलियन की है, और यहां तक कि जो चीन है वो $14 ट्रिलियन की है, हम तो $5 ट्रिलियन के लिए अभी कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों स्वास्थ्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बार स्वास्थ्य में बहुत एलोकेशन बढ़ाया गया है, 19% अधिक धन दिया गया है। फिर आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए अब जो नेक्स्ट चरण शुरू किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन, तो नेक्स्ट चरण में अब क्या किया जा रहा है कि गांव का जो कचरा है उसका प्रबंधन किया जाएगा। शहरों के कचरा प्रबंधन तो हो रहे हैं लेकिन गांव में अभी वो व्यवस्था नहीं है। इसके बाद फिर बकायदे सभी के लिए आवास के तहत 1.95 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगर लगभग 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे तो सोचिए कि आप उससे कितना रोजगार उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो कह रहा था वो ये कि जो आपके सिलेबस में है, छोटे छोटे नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैंने जितने भी आपको आंकड़े बताए हैं वो सबके सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित हैं, उनके आंकड़े आप एक जगह लिख लीजिए या जहां अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें शामिल कर लीजिए और बीच बीच में दोहराते जाइए। तो अगर आप इतने सारे आंकड़े अपने लिए छांट करके अलग कर लेंगे तो देखिए कि बजट आपके लिए कितना आसान हो गया है, अब आप इन आंकड़ों का सही उपयोग कर पाएंगे। अगर आप पूरे बंडल के बंडल बांध बांध करके अपने कॉपी में नोट करते चले जाएंगे तो मान करके चलिए उसमें से आप किसी का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फायदा। तो मित्रों यह एक तरीका होता है कि आप बजट का सही इस्तेमाल अपने क्वेश्चंस के आंसर को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करने में कर सके। स्वाभाविक है कि फिर जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को देखेगा तो देख करके प्रभावित होगा कि देखो इसने लेटेस्ट तक की जानकारी दे दी। उदाहरण के लिए मैं एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा महिलाओं के बारे में, है ना, वीमेन एम्पावरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप देखिए कि उसकी जो स्वयं सहायता समूह है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसमें सरकार ने इस बार के बजट में क्या किया है कि उसके जो सदस्य होंगे वो ₹5,000 का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं यहां नहीं बता रहा हूं, आप किसी से पूछ लीजिएगा, कभी चर्चा करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात कही कि उसके एक एक सदस्य को अगर वो चाहेंगे तो ₹1,00,000 का ऋण मिल सकेगा। इसका मतलब है कि जो स्वयं सहायता समूह है इसको लेकर के सरकार बहुत आशान्वित है और उन्हें वो और ज्यादा मजबूत बनाना चाह रही है। तो स्वयं सहायता समूह पर आपने टॉपिक भी पढ़ लिया है, आप उसके बारे में जानते भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें ये थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। और यही ऐड जो आप करेंगे, मान करके चले कि दूसरों की तुलना में आपके जो मार्क्स होंगे उसके स्कोर को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, वक्त की सीमा को देखते हुए अब मुझे अपने टॉपिक को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। प्लीज आप सब इसे ध्यान से एक बार फिर से सुन करके, और जो मैंने इंपॉर्टेंट आंकड़े बताए हैं चाहे तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं, और खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जो मेंस में बैठने की संभावना देख रहे हैं, और यहां तक कि जो स्टेट सिविल सर्विस में भी बैठ रहे हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को अपडेट कर लें। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एक एडिटोरियल कमेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, आप इसे जरूर देखिएगा, यह मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: प्रवीण चौरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से, राबिया नूर बरेली उत्तर प्रदेश से, तन्मय वर्मा अलवर राजस्थान से, रवि कुमार भागलपुर बिहार से, नितेश विश्वकर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, पीयूष राजा, दिनेश, दीपक गोस्वामी नैनीताल उत्तराखंड से, और नीतीश सुल्तानपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।